ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय आज का विषय है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ पथ है। कल का विषय बेटा परसों तीन दिन के बाद बार बार बोलता हूँ। क्यों बार बार बोलता हूँ? क्योंकि ये सत्यवाणी है। प्रत्येक मानव का परम कल्याण का आरंभ होते हैं इस सरल वचन समझने में कि मैं आत्मा हूँ, ईश्वरीय मैं नहीं हूँ। मैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास हूँ और इसलिए वो भगवान कृष्ण की सेवा करना भक्ति, भक्तिमय सेवा, प्राण प्रेममय सेवा, वो सेवा श्रेष्ठ पथ है। उससे मेरा परम कल्याण होगा। तो क्या करना, इस मानव जीवन प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा परम कल्याण होगा? इसके बारे में पृथक पृथक मत है। जैसे पिछले तीन सत्र में कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति चार मुख्य पंथ हैं या चतुर्वर्ग है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सामान्यतः कि एक रास्ता, एक उपाय श्रेष्ठ है उसको समझने से हम क्या चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँगा, ऐसे काम करने से मैं श्रेष्ठ हूँगा। तो वो कॉलेज जाओ, उस कॉलेज से तुम श्रेष्ठ हो जाए, या ये काम करो उससे तुम श्रेष्ठ बन जाएगा। तो कि एक रास्ता श्रेष्ठ है इससे हम क्या समझते हैं कि उसका पालन करने से मैं श्रेष्ठ हूँगा। तो वास्तव में मानव समाज में भगवान के भक्त श्रेष्ठ हैं, परंतु वो श्रेष्ठता मूढ़ कामी जन की श्रेष्ठता से भिन्न है। मूढ़ कामी लोग अर्थात समाज में अधिकांश व्यक्ति, उनका विचार है कि श्रेष्ठ का मतलब सबसे बड़ा होना, मैं बड़ा होना। ऐसे सोचना मूर्खता है, क्योंकि क्या है बड़ा होना, उसमें क्या है? इस मानव जीवन क्षणिक है और इस पृथ्वी बहुत छोटी है। तो यदि हम बहुत कम समय में इस बहुत छोटे क्षेत्र में बड़ा पद मिलते वो क्या है? जैसे रास्ते में कुत्ते रात को कुत्ते चढ़ते हैं और एक कुत्ते के दाल में सबसे बड़ा है एक कुत्ता। तो ऐसे मानव समाज में एक व्यक्ति तो क्या, एक गांव में सरपंच है, एक टाउन में मेयर है, एक राष्ट्र में चीफ मिनिस्टर है, एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फिर देश में प्रधानमंत्री सबसे बड़ा है। कितने प्रधानमंत्री आए हैं, गए हैं, सब जानते हैं वो चंद्रशेखर भारत का एक प्रधानमंत्री, सब सुनना है सुनना है। जो जवान तो खाली नाम सुनना है, जो जवान है। और देवी गौड़ा एक प्रधानमंत्री, ऐसे आते ही जाते हैं। उसमें क्या है, आज का राजा कल का कुत्ता, ऐसे ही होते। आज का कुत्ता तो कल राजा हो सकता, ऐसे है काल का क्रम में। कभी कभी हम उच्च पद मिलते हैं और ज्यादा समय हम नीच सामान्य रहते। तो वो इच्छा बड़ा होना, सक्सेसफुल बन जाओ, तुम सक्सेसफुल होना, सक्सेस 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 क्या है, सक्सेस है वो झूठी बड़े बड़े होना। और उसके बाद जो मानव समाज का विचार में बड़ा होते हैं, उसका अगला जन्म में शायद जो बड़ा होना का कारण से और बड़ा पद प्राप्त करने के लिए जितने पाप किया है, तो उसका फल है कि अगला जन्म में वो एक बड़ी टट्टी में छोटो क्रीमी बन जाए। ऐसा होता है, बड़ा बड़ा लोग तो कैसे बड़ा होते हैं इस कल युग में, बड़ा पाप करने से, और उसका फल से तो कीट क्रीमी की अवस्था मिलते। तो इस झूठी बड़ा होना भक्तों की इच्छा नहीं है, भक्ति श्रेष्ठ पंथा है, क्योंकि उसमें सद्विचार सद्विचार है कि कृष्ण बड़ा है और मैं जितने भी प्रयास करता हूँ मैं बड़ा नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जीवेश्व रूप हो कृष्ण नित्य दास। हमारा स्वभाव है कि हम कृष्ण के दास, भगवान कृष्ण महान है, हम छोटे हैं, और जितने भी हम प्रयास करते हैं हम भगवान के समान नहीं हो सकते। तो ऐसे ही कुछ लोग रावण हिरण्यकशिपु थोड़ा समय में बहुत बहुत बड़े थे, परंतु अंत में भगवान स्वयं हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण शिशुपाल कंस जरासंध ऐसे असुरों के वध किया है। तो हिरण्यकशिपु कहा गया, हिटलर कहा गया, स्टालिन कहा गया, महात्मा गांधी कहा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा, सब काल का क्रम से चला गया। कहा जगत में एक जगह में है लेकिन किसी के पता नहीं है, सब कहा है। तो बड़े हैं भगवान, भगवान है कृष्ण, और हम कृष्ण के दास है। और ऐसे कि मैं कृष्ण का दास हूँ इस सरल वचन स्वीकार करने से हमारे हमारे जीवन की संसिद्धि होती है, और सब कुछ जो सक्सेस बोलते हैं वो सब निरार्थ है। तो श्रेष्ठ मार्ग है सही मार्ग, और सही है कि कृष्ण भगवान में कृष्ण का दास हूँ। तो कर्म मार्ग में बड़ा होना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होना कर्म मार्ग में का मतलब ऐसे बड़ा पद प्राप्त करना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सरपंच एक कंपनी का सीईओ। तो एक कर्म कर्म मार्ग में श्रेष्ठता है ऐसे धनी होना, सत्ता रखना, लेकिन ये सब मूर्खता है, केवल मूर्खता। उसमें क्या है, जो बड़े भौतिक बड़ा पद मिलते हैं तो वे भी सुखी नहीं है, जो बड़ा है समाज का विचार है। ऐसे लोग तो बड़ा चिंतित रहते, चिंताम अपरिमय च, असंख्य असीम चिंता है बड़े लोग। तो ऐसे श्रेष्ठता कर्म में वो केवल मूर्त है। और ज्ञानी क्या है? ज्ञानी है ऐसे लोग जो ज्ञानी वैदिक शब्द में ज्ञानी शब्द का एक परिभाषा है कि ऐसे लोग जो कर्मियों की स्थिति विचार करके संकल्प करते हैं कि मैं वो सब बड़ा होना का प्रयास से उदासीन होऊंगा, मैं प्रयास करूंगा मुक्त होऊंगा। तो जो कहते ज्ञान मार्ग मोक्ष प्राप्ति श्रेष्ठ मार्ग है, उनकी इच्छा है तपस्या और विवेक लगाने से मुक्त होना, उनकी इच्छा है मुक्त होने के फल भगवान के साथ समान हो, ब्रह्मलीन, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। तो वो बड़ी इच्छा है ज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग की इच्छा। तो इस प्रकार जो कहते हैं ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, उनकी इच्छा है कि वो सब सामान्य लोग के ऊपर होना आध्यात्मिक बल से, वे भगवान के समान बन जाएंगे या स्वयं भगवान बन जाएंगे। तो वो भी मूर्ख है, ऐसा ज्ञान तो अज्ञान, क्योंकि कोई जीव तो भगवान के समान नहीं हो सकता। कितने बड़े मूर्ख कि मैं ध्यान से मैं भगवान बन जाऊंगा, तो कैसे संभव हो? वास्तविक भगवान तो किसी तपस्या नहीं करते, भगवान है। शिशु रूपी कृष्ण बहुत राक्षस मार्डर, फूतना राक्षस है वो, छोटी शिशु भगवान कृष्ण तो उसके पहले तो कोई अवसर नहीं था तपस्या करने। छोटी शिशु वो महान महती राक्षसी पुतना का वध किया, तो कैसे संभव? क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान है, शिशु का रूप में प्रकट होते हैं इनके भक्तों को आनंद प्रदान करने के, परंतु शिशु के रूप में भी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ज्ञान श्रेष्ठ पथ, लोग जो ऐसे कहते हैं उनकी इच्छा है मुक्त होने से भगवान के समान हो, जो पूरा असंभव है। तो ऐसे ही सोचना सबसे बड़ा अविद्या है। तो मुक्ति भगवान के समान होना वो तो संभव नहीं है। मुक्त अवस्था में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने चाहिए। और योग्यम जो योग को श्रेष्ठ पथ मानते, उनका विचार में योग सिद्धि प्राप्त करना वो श्रेष्ठ। तो योग करने से तो दूसरों का मन समझ सकते हैं और जादू जैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, क्या है, क्या फायदा है? ये बच्चों का खेल जैसे, जैसे एक कहानी है कि एक युवक अपना गाउन चढ़ के हिमालय गए हैं और योग तपस्या किया, एक गुरु का मार्गदर्शन से योग व्यायाम किया, योग उपासना किया, और 20 साल के बाद वापस आया और बड़ा योगी बन गया, अब लंबी दाढ़ी और जटा वो सब आया था और सबको बताया कि वापस आया हो, योगी बन गए हो। तो सब वो लड़का, अभी तो लड़का नहीं है, योगी बन गए हैं, उससे पूछे तो क्या कर सकते हो, योग सिद्धि हमको देखाओ, क्या क्या कर सकते हो। तो योगी सबको बताया कि किसी बिना किसी वाहन बिना नाव में नदी का पार कर सकता, और समय तो इतना ब्रिज नहीं था, तो नदी पार करना तो नाव में से था। तो और ऐसे ही देखा है सबको, ऐसे चल के नदी का पार किया, और सब लोग तो ऐसे हो कितना बड़ा योगी बन गया। तो एक आदमी जो उपस्थित था बोला कि वो ये योग सिद्धि का दाम है चारण, क्योंकि वो माजी क्या बोलते हैं वो नाविक, वो चार आना का किराया है नौ से नदी पार का। तो क्या लाभ है यदि यदि चल के पैदल से नदी का पार कर सकते, वो क्या उसमें क्या फायदा, एक्चुअली क्या फायदा है उसमें। तो भक्तों जानते है कि भक्ति श्रेष्ठ पथ है, क्योंकि उसमें स्वीकार करना कि मैं छोटा हूं, कर्मी भौतिक विचार से बड़ा होना चाहते, ज्ञानी तो इतने बड़े एम्बिशियस है कि भगवान जैसे होना चाहते, और योग्य अंग तो ऐसे जादू और सिद्धि दिखाना चाहते। और भक्तों जानते हैं कि नम्रता, नम्रता मुख्य गुण है, कि मैं भगवान के समान नहीं हो सकते, और ऐसे खुद को बड़ा बनाना वो क्या है, वो भगवान से कंपटीशन करना जैसे, ना खुद को नकली भगवान बनाना ऐसे। तो कि मैं भगवान का दास हूं ऐसे समझना श्रेष्ठ पथ, और वास्तव में भगवान के भक्तों सबसे बड़े हैं। तो कैसे बड़े होते, क्योंकि वे जानते कि मैं छोटा हूं। तो हिरण्यकशिपु बहुत कठोर तपस्या करने से बल मिला, पूरा ब्रह्मांड का दमन करना, और इंद्र को निकाल के तो स्वयं जगत के स्वामी बन गए। और हिरण्यकशिपु का एक छोटा सा पुत्र तो ऐसे कुछ तपस्या नहीं किया, तो प्रहलाद का एक गुण विशेष गुण था कि प्रहलाद तो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त, तो इसलिए हिरण्यकशिपु तो इतना बलवान हुए कि इंद्र को भी हटाया स्वर्ग से, परंतु प्रहलाद को कुछ भी क्षति नहीं दे सकते। हिरण्यकशिपु प्रयास किया प्रहलाद को वध करना अलग अलग उपाय से, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार प्रहलाद तो कुछ प्रयास नहीं करके भी हिरण्यकशिपु से और ज्यादा बलवान थे। तो कैसे, क्योंकि कौन्तेया प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति, क्योंकि भक्तों तो भगवान से रक्षित होते, और इस प्रकार वे बड़े बड़े असुरों से भी बलवान होते। भक्तों तो भगवान की रक्षा में रहते हैं, और मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हा, तो भगवान वे पूरा भगवान की रक्षा के ऊपर निर्भर करते हैं। और यदि भगवान मुझके मरेंगे या रखेंगे पोषण करेंगे, मैं भगवान का समर्पित दास हूँ, उनकी भावना। और इस प्रकार भक्तों भगवान का आशीर्वाद से भगवान का चरण आश्रय मिलते हैं। और जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, तब तक हमें भौतिक क्लेशों को सामना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। परंतु भक्तों अंत में भगवान का आश्रय मिलते हैं, वैकुंठ में, गोलोक में। तो इस प्रकार भक्तों तो श्रेष्ठ पद मिलते हैं, भक्तों तो सब क्लेशों का पार करते। और कर्मी, ज्ञानी, योगी तो बड़े होते हुए भी उनका पुनरापि जननम पुनरापि मरणम होते, बार बार जन्म लेना है, मृत्यु प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कर्म, ज्ञान, योग सब तुच्छ पंथा है और सर्वश्रेष्ठ पंथ सबके लिए है कृष्ण भक्ति। इसलिए हम बार बार बोलते हैं सबको इस कृष्ण भक्ति को, आप सब करते हैं इसलिए आप सब यहाँ आते हैं। तो जिससे आपकी श्रद्धा पूरी मजबूत होगी, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, जिससे आप और भी जीवन समर्पण करेंगे कृष्ण की सेवा में। तो यज्ञ, दान, पुण्य कर्म, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान और बहुत प्रकार के धार्मिक उपाय है। तो क्यों हम बोलते हैं भक्ति करना, केवल भक्ति करना? क्योंकि वो कृष्ण भगवान का उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यजामि एकं शरणं व्रज। तो और सब प्रकार धर्म त्याग करके भगवान कृष्ण कहते मेरे चरण में शरण ले लो। तो उस एक ही भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। मनीषीगण भी पवित्र होते हैं यज्ञ, दान और तप तपस्या करने से। तो इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप करने चाहिए। तो कैसे? माम एकम शरणम व्रज, केवल भक्ति करना। तो भक्ति में यज्ञ करना, तपस्या करना, दान देना, सब कुछ सम्मिलित है। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों किसी प्रकार का अन्य पुण्य कर्म पूरा त्याग करते, परंतु भक्तों सब कुछ करते भगवान की सेवा में। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यद करोषि यदश्नासी यज जुहोषि ददासी यद यद तपस्यसी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो जो तुम करते हो, खाते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी तुम करते हो, करो मुझको अर्पण करके। तो यज्ञ करना चाहिए भक्ति में। हम नहीं बोलते यज्ञ बंद करना, एक प्रथा है और हिंदू समाज में कि कुछ पंडित लोग आते हैं एक गांव में, या एक पंडित या स्वामी आते हैं और सब गांव वाले से collection lete, paisa lete, yagya, yagya banane ke liye, ahuti se bahut ghee or anaj dalte, or I say bare bare yagya banate, lekin vastav mein usse kuch fayda nahi hota. बहुत बड़ी बात होते हम बड़े यज्ञ बनेंगे जन कल्याण के लिए विश्व कल्याण के लिए बहुत बड़ी बात होते और बहुत बड़ा कलेक्शन भी होते बहुत बड़ा आग होते और उसके बाद कुछ नहीं. तो ऐसा यज्ञ से फल होने चाहिए, परंतु इस कली काल में यथात ब्राह्मण नहीं है जो अच्छी तरह सब मंत्र उच्चारण कर सकते, जो अच्छी तरह सब यज्ञ विधि जानते हैं, जिनके चरित्र और हृदय पूरा शुद्ध है. तो यदि आई और द्रव्य भी अशुद्ध है तो यज्ञ अग्नि में एक शुद्धगी डालना चाहिए, लेकिन शुद्धगी कहाँ मिलते और रक्षित गायों से मिलना चाहिए. तो और शुद्ध अनाज भी होने चाहिए, परंतु आजकल शुद्धता पवित्रता बहुत दुर्लभ है और विशेषकर ऐसे योग्य ब्राह्मण बहुत कम है. जो योग्य ब्राह्मण है तो उस प्रकार का यज्ञ नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि कलि युग में एक ही यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ. तो यज्ञ में किसी यज्ञ में ऐसे यज्ञ करने में यदि कुछ त्रुटि हो तो वो वंचित फल प्राप्ति नहीं हो. जैसे भागवत में एक वृत्तांत है कि त्वष्टा एक ब्राह्मण देव एक यज्ञ बनाया एक पुत्र, वो यज्ञ कौन से एक पुत्र की उत्पत्ति चाहते जिससे इंद्र का वध हो, परंतु वो पूरा मंत्रोच्चारण में वो त्वष्टा एक शब्द तो अच्छी तरह उच्चारण नहीं किया और उसका फल था कि ऐसे पुत्र को उत्पत्ति दिया जिससे इंद्र का वध नहीं होगा, जिसका वध होगा इंद्र से. तो ऐसे होते हैं. तो सब कुछ एकदम पूर्ण शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो फल विपरीत होगा या नहीं होगा. जैसे आजकल हम देखते हैं तो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और उससे कुछ भी फल नहीं होता. तो इस कलि युग में संकीर्तन यज्ञ एक ही यज्ञ है, कृष्णवर्णम त्वषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्रायर यजन्ति हि सुमेधसः. कलि युग में ज्यादातर लोग तो आध्यात्मिक विचार से बुद्धिमान नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम होते है और भौतिक बुद्धि भी कम होते है, परंतु इस कलि काल में जो बुद्धिमान है वे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, परंतु कृष्ण वर्ण नहीं है, उनका अंग कंठी सोन है गौर है, इसलिए उनका नाम है गौरंग. और वे सदैव कृष्ण 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 कीर्तन करते और चैतन्य महाप्रभु और उनके सब पार्षद की उपासना होती है संकीर्तन यज्ञ में से. तो इस संकीर्तन यज्ञ में अंश ग्रहण करते हैं बुद्धिमान लोग इस कलयुग में. तो हम नहीं बोलते कि यज्ञ को बंद करना, परंतु इस कल युग में यज्ञ संकीर्तन यज्ञ होना चाहिए। तो श्रेष्ठ यज्ञ है क्या है? यज्ञ क्या मतलब क्या है? कुछ द्रव्यों यज्ञ अग्नि में अर्पण करना। तो श्रेष्ठ यज्ञ है अपना को अर्पण करना। तो भक्ति वो है आत्म समर्पण कि हे कृष्ण मैं आपका दास हूं, परंतु माया से मोहित होने का कारण मैं आपसे दूर रहता हूं, अभी मैं आत्मसमर्पण करता हूं। तो ऐसी भावना सभी यज्ञ का सारांश है। तो घी अनाज वो सब यज्ञ में डालना है, परंतु भावना होने चाहिए कि मैं स्वयं को अर्पण करता हूँ भगवान को। तो यही यज्ञ सभी यज्ञ का सारांश है। इसलिए श्रेष्ठ यज्ञ है कृष्ण भक्ति, और विशेषकर इस कलि युग में संकीर्तन यज्ञ से भक्ति पूर्ण होती है। तो यज्ञ करना चाहिए, नहीं बोलते यज्ञ बंद भक्ति करो यज्ञ बंद करो, नहीं, यज्ञ करो संकीर्तन यज्ञ करो, और उसमें बलिदान होगा स्वयं नरबलि। हमारा कृष्ण भवनामृत संघ का प्रचार है नरबलि करो, अर्थात कि मैं नर हूं, मैं बड़ हूं, मैं कृष्ण से अलग हूं, वो सब भूल धारणा त्याग करो और पूरा प्राण कृष्ण सेवा में कृष्ण भक्ति में अर्पण करो। तो यही यज्ञ वास्तविक यज्ञ है। कृष्ण भक्ति है श्रेष्ठ यज्ञ, और कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ दान है। शास्त्र अलग अलग शास्त्र में दान देना अनुमोदित है, अन्नदान और वस्त्रदान, विद्यादान, भूमिदान, अलग अलग प्रकार का दान है। जो श्रेष्ठ दान है वो दान जिससे वो दान का ग्राहक तो और कभी भी किसी अभाव से पीड़ित नहीं होंगे। तो सबसे इतिहास में सबसे बड़ा दानवीर है बलि महाराज, जो पूरा जगत को वामन देव को दान में दिए। बलि महाराज एक यज्ञ बनाया है, और फिर यज्ञ की बात वापस आते हैं। तो यज्ञ शुक्राचार्य ने से यज्ञ बनाया, और बीच में वामन देव भगवान आए थे, और यज्ञ की पूर्णता के लिए बहुत अनुकूल है कि यज्ञ करने के साथ अनुकूल योग्य ब्राह्मणों को दान देना, और जितने भी दान देना तो इतना सा फायदा होता। तो वामन देव आया है और Bali Maharaj say, Teen Kadam Bhumi. Teen Kadam Bhumi Mandir. Oh, Bali Maharaj, what? Or be level. Teen Kadam okay. So, Vamandev do kadam me pura jagat lele. Sirf is prithvi ki bhumi nahi to pura jagat lele. Or Shukracharya jante te ki ye Vamandev Vaman ke roop me Bhagavan Vishnu hai. Keshava dhrita vamana rupa jai jagadisha hai. इसलिए वो Bali Maharaj इनके शिष्य को निषेध किया तो मत दो इस ब्राह्मण को दान मत दो परंतु Bali Maharaj बोले कि वचन दिया था इस ब्राह्मण को भूमि दान देना तो इसलिए Shukracharya, aapne pahli baat hai ki Shishya Bali Maharaj, inke guru Shukracharya ka vachan grahan nahi ki, aswikar ki. To isliye guru to Shishya ko shrap di. Ki sab kuch jo tumhare paas to wo sab chhodna padega. Is Vishnu Bhagavan तुमसे सब कुछ ले लेगा और तुम्हारा पूरा पतन होगा तो इस प्रकार वो यज्ञ जिसमें सब कुछ अनुकूल था तो शुक्राचार्य का विचार से तो सब कुछ प्रतिकूल हो गया सब विपरीत हो गया तो वो पूरा जगत लेने के बाद वो वामनदेव वो शुक्राचार्य से पूछे कि तो तुम्हारा विचार से सब विपरीत हो गया है क्या वो यज्ञ तो असफल हो गया है सफल था यदि तुम्हारे इच्छा के अनुसार चला गया तो यज्ञ बनाया जिससे Bali Maharaj की सत्ता रहेगी परंतु फल विपरीत हो गया कि Bali Maharaj के पास वो पूरा जगत की संपत्ति जो थी तो सब कुछ खो गया तो शुक्राचार्य वामनदेव का ऐश्वर्य देखने से ही तो सुबुद्धिमान हो गया और सुविचार किया और इस भगवत में ऐसे कहते हैं Shukracharya ne kaha Vamandev ko mantratas tantratas chidram desha kalaha vastutaha sarvam karoti nischidram anusankirtanam tava. To Shukracharya jo vedvit hai unhone kaha ki yagya karne mein yadi kuch dosh ho mantra ucharan karne mein dosh ho Tantra arthat yagya vidhi me agar yagya vidhi karne me yadi kuch truti ho yadi desh to pura pavitra nahi ho to yagya me to desh to pura pavitra hone chahiye kal bhi anukul hone chahiye isse yagya karne ke liye pahle jyotish se yatharth काल निर्णय करना है तो यदि देश अपवित्र है या काल अनुचित है तो जितने भी दोष हो यज्ञ में तो यज्ञ तो पूरा निर्दोष होने चाहिए सफल होने के लिए परंतु शुक्राचार्य का विचार है कि तो किसी भी छिद्र छुट्टी हो यज्ञ में तो पूर्ण होते हैं अनुसंकीर्तनम तब संकीर्तन करने से सब छुट्टी जो हो किसी यज्ञ करने में तो तो पूरा हो जाते। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ में जिसमें केवल संकीर्तन करने हैं तो उसमें देश काल विचार नहीं है। उस हरि संकीर्तन में देश काल विचार नहीं है। यदि उच्चारण ठीक नहीं हो, यदि और किसी भी दोष हो तो कोई दोष नहीं रहते, क्योंकि भगवान का नाम इतना पवित्र है। तो इसलिए विशेषकर इस कलि युग में सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन, सबसे बड़ा दान है कृष्ण भक्ति। यदि कोई व्यक्ति हरि संकीर्तन में खाली एक बार जीवन में हरि संकीर्तन करते तो उससे सब पाप से विमुक्त हो जाते और भक्ति का उदय होते उसका हृदय में। कितना बड़ा कल्याण होते है हरि संकीर्तन से मापना संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा दान है दूसरों को हरि संकीर्तन में लगाना और भक्ति के बारे में ज्ञान देना। इसलिए हम भगवद गीता श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का वितरण करने में व्यस्त रहते हैं जिससे जन कल्याण होगा, वास्तविक जन कल्याण होगा। कैसे? यज्ञ और दान से। यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ और दान है इस विद्या का दान, कृष्ण भक्ति विद्या। और तपस्या भगवान कृष्ण कहते हैं कि तपस्या वो भी चरण नहीं, तो कृष्ण भक्ति में कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं है। परंतु भक्ति और भौतिक इंद्रिय सुख तो दोनों एक साथ नहीं चलते। इसलिए कृष्ण भक्ति करने में कम से कम इतना सा तपस्या करने चाहिए कि मांस मछली अंडा ये सब गंदी चीजों तो नहीं करना चाहिए। विशुद्ध कृष्ण प्रसाद के बिना भक्तों तो और कुछ नहीं लगते। वो एक तपस्या है, क्योंकि आजकल जीव की रुचि का प्रलोभन के बहुत घोषणा है, एडवर्टाइजमेंट, आइसक्रीम खाओ, गुटखा, बिस्कुट, चाय। भक्तों ना बोलते, हम खाली कृष्ण प्रसाद लेंगे, वो भक्तों का संकल्प, वो एक प्रकार का तपस्या है। भगवान कृष्ण की दया से इनका प्रसाद इतना स्वादु है कि एक्चुअली कोई तपस्या नहीं है, वो सब चरण। चाय में क्या है, कोका कोला क्या है, वो तो कुछ नहीं है। कृष्ण प्रसाद स्वाद का विचार में भी कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ। तो एक और तपस्या है इंद्रियों को दमन करना, व्यभिचार नहीं करना। आजकल युव समाज में एक नया ढंग है जो पहले भारत में नहीं था, फ्री सेक्स। तो विवाह करने के पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करना, परंतु उससे भौतिक विचार से भी और आध्यात्मिक विचार से भी सत्यनाश होते, चरित्र नाश होते। तो भक्तों इस तपस्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य गृहस्थों के लिए भी अदमित इंद्रियों से आध्यात्मिक प्रगति नष्ट होते हैं। तो ऐसे कुछ तपस्या करने चाहिए। तपस्या सुबह जल्दी उठना, पूर्व काल भारत में सब लोग तो सूर्योदय के पहले उठे, आजकल लोग तो 7 बजे 8 बजे जितने भी लंबे समय तक सोते रहते। तो उससे भौतिक विचार से भी और आध्यात्मिक विचार से भी कुछ फायदा नहीं होता। जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त सबसे अनुकूल समय है। कीर्तन, पूजा, जप इत्यादि करने के लिए तो इतने सब तपस्या है। तो भरत कोई बड़ा तपस्या का जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ तपस्या होने चाहिए। और कर्मी लोग भी तपस्या कर, सुनो ट्रैफिक का आवाज क्या, लोग काम से आते इस समय, काम से, और कुछ लोग इस समय काम जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, नाइट शिफ्ट हो, क्या है कैसे प्रगति है नाइट शिफ्ट। तो तपस्या का ऐसे लोग इतना सा मेहनत कर, इतना सा मेहनत करते किस लिए, खाली काफी पैसा कमाने के लिए, जिससे दिन में 2-3 रोटी खा सकते। खाली युग में यदि एक व्यक्ति काफी पैसा कमा सकते, एक छोटा सा हम दो हमारे जो एक छोटा सा परिवार चलाने के लिए वो एक बड़ा काम है। तो इस कलि युग में ज़्यादा तपस्या करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि साधारण जिंदगी इतना कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबको भक्ति दान दिया है और सबको बताया हरे कृष्ण नाम करो, कृष्ण प्रसाद दे लो, व्यभिचार व्यसन मत करो, और ऐसे और कोई बड़ा तपस्या नहीं करके जीवन की परम संसिद्धि मिलेगी। तो ये सब विचार से भी भक्ति श्रेष्ठ पथ है, और इसलिए हम बार बार आप सबको बताते हैं कृष्ण भक्ति करो और सब कुछ बेकार है। और सभी भक्तों से हम भी प्रार्थना करते हैं, तो भक्ति दान मुझको दे दो। वंशा खलपथ रूपेश कृपा सिंधुभ्य एवं पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव कल्प वृक्ष, और वैष्णवों से हम भक्ति दान मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये श्रेष्ठ दान है, कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ पथ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंत्र चास तंत्र चास क्षेत्र देश एक बात है, अगर किसी का प्रश्न हो तो लगते ये सब बात सुन के आपके मन में बहुत प्रश्न आएगा, क्योंकि अभी तक आपका जीवन में तो ऐसी बात नहीं सुने। तो स्कूल जाते हैं, टीवी देखते हैं, और माता पिता से अलग अलग बात सुनते तो आपका मन में बहुत प्रश्न आएगा। तो हमारे भक्त लोग जो यहाँ इस हरे कृष्ण केंद्र में रहते हैं वो सब जीवन समर्पण किया है भक्ति करने के लिए और वितरण करने के लिए, और सब प्रतिदिन शास्त्राभ्यास करते हैं, सब विद्वान है, सब जानते हैं शास्त्र का सिद्धांत। तो अभी इस छोटे सा प्रवचन के बाद इतना सा समय नहीं है सबके प्रश्न को उत्तर देने के लिए, तो आप सब किसी भी समय आ सकते हैं और हमारे सब ब्रह्मचारी से ऐसा वार्तालाप कर सकते हैं, और आपके आपके मन में सब शंका जो हो तो सब स्पष्ट हो जाएगा। एक सुझाव है, सव्यसाची प्रभु अभी यहाँ आया तो प्रवीण है भक्ति मार्ग में, बहुत सालों से ब्रह्मचार्य तपस्या करते हैं और शास्त्राभ्यास करते हैं, और विशेषकर युव समाज में प्रचार करते हैं, तो आपके सभी प्रॉब्लम्स जानते हैं, तो स्टूडेंट्स का क्या हाल है वो जानते हैं, तो आपको मदद कर सकते हैं आपका भक्ति जीवन में और आपका साधारण जीवन में भी। हाँ, अभी किसी प्रश्न को मैं जवाब दे सकता हूँ लेकिन पूरा नहीं, काल सीमित है, लेकिन दूसरे समय जब सब खाली हो तो लंबी चर्चा संभव होगी।